परिशिष्ट दो, पांच अनुच्छेदों की शाही शपथ, द इम्पेरियल ओथ ऑफ फाइव आर्टिकल्स। पांच अनुच्छेदों की शाही शपथ को अधिकार पत्र शपथ के नाम से भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय नीति की घोषणा मेजी सम्राट द्वारा अपने शाही पूर्वजों को दिया गया वचन था। यह ऊंची आवाज में 6 अप्रैल 1868 को उप मुख्य कार्यपालक संजो सानेतोमी, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव संजो सानेतोमी द्वारा क्योटो के राजाभिषेक कागार में पढ़ी गई थी। इस अवसर पर सम्राट स्वयं तथा 400 से ऊपर राजाधिकारी उपस्थित थे। इस अधिकार पत्र शपथ में घोषणा की गई कि पहला, विचार सभाएं व्यापक रूप से स्थापित की जाएंगी तथा समस्त मामले जनमत से तय किए जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण राष्ट्र जिसमें उच्च एवं निम्न समस्त वर्ग सम्मिलित हैं, राज्य के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में एक होंगे तथा सहयोग देंगे। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे लोगों की उदासीनता देश को प्रभावित न कर सके। चौथा, पुराने पैशाचिक रीति रिवाज बहिष्कृत कर दिए जाएंगे तथा न्याय लोक एवं परलोक के उचित नियमों पर आधारित होगा। शाही शासन के आधार स्तंभों को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के लिए बुद्धि एवं ज्ञान का समस्त विश्व में अन्वेषण किया जाएगा। बाद में इस अधिकार पत्र का उदाहरण उस अपरिवर्तनीय राजाशाही की विवेकपूर्ण घोषणा के रूप में दिया गया जिसने संसद की स्थापना का समर्थन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह धारणा भी पैदा करने की कोशिश की गई कि यह अधिकार पत्र प्रजातंत्र का समर्थक था तथा इसे मूल रूप में 1946 में 9 वर्ष के अवसर पर सम्राट हिरोहितो ने फिर से जारी किया था। इस अधिकार पत्र से मेजी पुनः स्थापन के केवल दो मुख्य नेता किदो ताकायोशी एवं इवाकुरा तोमोमी ही पूर्ण रूप से जुड़े थे। यूरी किमा मासा, जो जापानी सरकार में कनिष्ठ पार्षद थे, ने जनवरी 1868 में इस पांच अनुच्छेदों के अधिकार पत्र की सबसे पहले कल्पना की और उसे लिखित रूप दिया। फरवरी 1868 के आरंभ में एक और कनिष्ठ पार्षद फुकुओका ताराचिका ने इसे संशोधित किया, लेकिन मार्च के अंत के करीब इस योजना को तीव्र गति और शायद पुनर्जीवन तब मिला जब किदो का ध्यान इसकी ओर गया। किदो ने आरंभिक पांच अनुच्छेदों में से एक को हटा दिया और उसी की जगह पर अपनी तरफ से एक अनुच्छेद जोड़ दिया। कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के बाद, जो शायद इवाकुरा द्वारा किए गए थे, इसे किदो ने पास करवा लिया। लेकिन कीदो ने इस अधिकार पत्र को एक अल्पकालीन मुद्दे के रूप में लिया। ओकुबा तोशीमिची तो यहाँ तक संशयात्मक थे कि उन्होंने इस अधिकार पत्र की शपथ की रस्म में आना भी समय बर्बाद करना समझा। शपथ के आरंभिक उद्देश्य अल्पकालीन थे। तोकुगावा शोगुनों से देश की बागडोर संभाल लेने के बाद मेजी नेताओं को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नई मेजी सरकार दिवालियापन, अस्थिरता, व्याकुलता, उद्देश्यों को लेकर विभाजित समाज व सामाजिक असंतोष की आशंका तथा विदेशियों के विरुद्ध हिंसा जैसी कठिनाइयों से बेहद चिंतित थे। जैसा कि रॉबर्ट एस्पॉल्डिंग ने कहा है, अनुच्छेद एक का मतलब एक संसद के लिए वादा नहीं बल्कि यह प्रतिज्ञा थी जिसके तहत सत्सुमा एवं चोशु क्षेत्रों के नेता तोकुगावा विरोधी दायमियों एवं समुरायों के साथ राजसत्ता में भागीदार बन जाएं। आर्टिकल 1 वाज इंटेंडेड नॉट एज ए प्रॉमिस फॉर ए पार्लियामेंट बट एज ए प्लीज डेट लीजर डेट लीडर्स फ्रॉम द सत्सुमा एंड चोशु डोमेन्स वुड शेयर पावर विथ अदर एंटी तोकुगावा दैम्यो एंड समुराय। यह सुझाव दिया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 की कन्फ्यूशियसवादी भाषा का मुख्य उद्देश्य मेजी सरकार को प्रभावशाली एवं संपन्न लोगों का राजनीतिक एवं विशेषकर आर्थिक समर्थन प्राप्त करना था। उसके साथ, जैसे कि एस्पॉल्डिंग ने इशारा किया है, आखिरी दो अनुच्छेदों के द्वारा उम्मीद की गई थी कि वह विदेशियों के ऊपर आक्रमणों पर पाबंदी लगा देंगे तथा पाश्चात्यवाद की नीति, जिसके सरकार के अंदर विरोधी भी थे, को शाही स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। टू कर्ब अटैक्स ऑन फॉरेनर्स एंड टू गिव इंपेरियल सैंक्शन टू ए पॉलिसी ऑफ ए वेस्टर्नाइजेशन डेट हैड मैनी ओपोनेंट्स विद इन द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस अधिकार पत्र को, विशेषकर इसके प्रथम अनुच्छेद को, प्रजा में सर्वोच्च श्रेणी की महत्वाकांक्षाओं का जन्मदाता माना है, क्योंकि प्रजा सामंती संघर्ष, दलीय झगड़ों तथा रूढ़िवादी से तंग आ चुकी थी। इन विद्वानों के अनुसार इस अधिकार पत्र में यूरी की मीमांसा का प्रगतिवाद, तोषा विचारधारा का उदारवाद तथा कीदो का सामंत विरोधवाद शामिल थे।